हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह जब वंश उठा तो गीत कमरे में नहीं थी। वो से पहले उठने से पहले ही कमरे से जा चुकी थी। वंश भी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था। वो तैयार होकर ऑफिस चला गया। उसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि वो गीत को नहीं देखना चाहता था। ऑफिस में वो अपने कमरे में वो परेशान बैठा है और अविनाश उसके पास है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुम हनीमून से आए हो और ऐसे गुमसुम क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इस शादी नाम के पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता। तुम्हें इसके बारे में भाभी से बात करनी चाहिए कि मैंने बात की थी, वो तलाक के लिए तैयार नहीं। उसने मना कर दिया। क्या कहा उसने? अविनाश ने पूछा। उसने कोई रीज़न नहीं दिया। ठीक है, उसने इनकार कर दिया, मगर मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। बहुत जल्दी उसे पछताना पड़ेगा अपने फ़ैसले पर। वो खुद तलाक मांगेगा मुझसे। गीत अपने कमरे में बैठी है, वो परेशान थी। तभी दरवाज़ा खोलती हुई नीता कमरे में आती है। वो नीता को देखकर खड़ी हो गई। आंटी, आप मुझे बुला लेती? गीत कहने लगी। चली क्यों नहीं जाती मेरे बेटे की लाइफ से तुम? तुम जैसी एक मिडिल क्लास लड़की मेरे बेटे से के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कहाँ वो और कहाँ तुम? लेकिन पता है तुम्हें, बहू को किचन में जला दिया जाता है। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है, नीता उसे धमकाने लगी। मेरी बात मानो, चुपचाप घर छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, सोच लो। और हाँ, ये बात अगर तुमने राजवीर को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गीत अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। वो अपने मम्मी और पापा को याद कर रही थी। आप दोनों मुझे साथ ही क्यों नहीं ले गए? क्यों छोड़ गए ऐसी जिंदगी और बेइज्जती के लिए? मम्मी, एक बार भी सोचा कि आप मुझसे कैसा वचन ले रही हो? आप अच्छे से जानती हैं कि मैं आपका वचन कभी नहीं तोड़ सकती। वो सारा दिन अपने कमरे में लेटी रोती रही। उसके तो कोई आंसू रोकने वाला भी नहीं था। वो उन दोनों ही माँ बेटे से परेशान थी, मगर उन्हें गलत भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उन दोनों ने तो शादी से पहले ही उसे बता दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करते। फिर भी उसने शादी की थी। तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है और दरवाज़ा खोलती हुई सोना अपनी व्हीलचेयर पर आती है। भाभी, बाहर आ जाओ, हम लोग आपकी वेट कर रहे हैं खाने पर। गीत सोना के साथ बाहर आ जाती है। डाइनिंग टेबल पर राजवीर पहले ही बैठा हुआ था। बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, इसीलिए सोना को बुलाने भेजा। तभी वंश भी बाहर से हॉल में एंटर करता है। भाई, आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं, सोना ने कहा। बहुत दिन हो गए, हम लोगों ने साथ में खाना नहीं खाया। चाहे वंश का मूड खराब था, मगर वो सोना की बात नहीं टाल सकता था। वो भी आकर बैठ जाता है। तो बेटा, तुम ठीक हो? राजवीर ने गीत से पूछा। जी पापा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पंजाब और मुंबई में फ़र्क लगा? कैसा है हमारा मुंबई शहर? जब मैं इसे जानने लगूंगी तो आपको बताऊंगी। गीत ने बात खत्म करनी चाही। सही बात है, तुम लोग आज शिमला से आए हो, तुम्हें मुंबई घूमना चाहिए। वंश, कल तुम गीत को खाने पर लेकर जाने वाले हो, मेरी बहू को शहर दिखाओ। मगर डैड को तो वो मीटिंग है। कोई बात नहीं, मीटिंग पर मैं वीर को भेज दूंगा। कंस्ट्रक्शन वाली मीटिंग जल्दी होनी है, तुम केवल उसे अटेंड कर लेना, बाकी काम मैं और वीर भी देख लेंगे, राजवीर ने कहा। अब गीत के प्रति भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, काम और बीवी दोनों में बैलेंस बनाना सीखो, राजवीर ने उसे हंसकर कहा। कल तुम्हारी ऑफिस से छुट्टी, बीवी को शहर घुमाओ, बाहर खाना खिलाओ, शॉपिंग कराओ, समझे? नीता को राजवीर की बात बहुत बुरी लग रही थी। वो चुपचाप बैठी हुई थी। वंश भी परेशान है, मगर वो अपने डैड से कुछ नहीं कहता। खाने के बाद वंश कमरे में आता है। वो अपना ब्लेजर बेड पर रखते हुए बाहर वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो चेंज करके वापस आता है। गीत सोफे पर बैठी हुई उसकी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद वंश भी आकर बैठता है। तभी वंश का फ़ोन बजा। अविनाश का फ़ोन था। क्या हुआ, किस लिए फ़ोन किया? वंश ने पूछा। कल टूर्नामेंट हो रहा है, चलोगे ना? हम पुराने दोस्त इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पर। कल मैं फ्री था, बिल्कुल जा सकता था, मगर कल डैड ने मुझे एक फजूल सा काम दिया है, वंश ने गीत की तरफ देखते हुए कहा। और वो काम करना मेरी मजबूरी है। गीत वंश से बात करने के लिए बैठी हुई थी। वो उसे कहना चाहती थी कि वो राजवीर से बात करेगी और वो दोनों बाहर नहीं जाएंगे, मगर जिस तरह से वंश ने फ़ोन पर अपने दोस्त से बात की कि कल वो एक फजूल सा काम करने जा रहा है, गीत के अंदर से आवाज़ ही नहीं निकली। उसे बहुत ज़्यादा रोना आया। वो उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर वो वॉशरूम में रही, अपने आप को उसने ठीक किया। वो रोना नहीं चाहती थी और वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। वंश ने उसे वॉशरूम जाते हुए देखा। उसे भी बुरा लगा था कि उसने गीत के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, जानबूझकर उसकी बेइज्जती की थी। जानबूझकर, वंश ऐसा नहीं था, उसने ये भी सोचा था कि उसके इस तरह बोलने पर गीत उस पर नाराज होगी, मगर वो बिल्कुल चुप हो गई थी। नीता सिया से बात कर रही थी। सिया, अगर तुम वंश को चाहती हो तो तुम्हें उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखो, अगर तुमने पीछा छोड़ दिया तो तुम कभी वंश को नहीं पा सकोगी। तुम मुझे पसंद हो और तुम्हें ही मेरी बहू बनाना है।